नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,683 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया। प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया और चमोली जिले के स्वाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य के 1,983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद ग्रामीण और सीमांत इलाकों में सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी। इससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी तथा पुलिस और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनेगी। प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही है। यह कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद उठाया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने सभी जिलों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी तत्काल लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औषधि निरीक्षक सिरप के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराएं और दोषपूर्ण दवाओं को बाजार से हटाएं। साथ ही चिकित्सकों से अपील की गई है कि वे बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें।
भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं दी जानी चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं के सामान्य उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है। विशेषज्ञ की सलाह और सही खुराक में ही दवा दी जा सकती है। विशेष रूप से डेक्सट्रोमेथोर्फन सिरप और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट तथा फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड संयोजन वाली दवाएं 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनता से अपील की है कि डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को दवा न दें और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कल डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेडियम ओएनजीसी देहरादून में 30वें विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस की लोकधुनों के साथ देश विदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव की शुरुआत सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान की प्रस्तुति से हुई। उनकी सरोद और तबले की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन भारत और विशेषकर उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं और गौरवशाली विरासत का उत्सव है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि जब नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को आत्मसात करती है, तभी वह आत्मविश्वास से विश्व मंच पर खड़ी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सहकारिता महोत्सव की शुरुआत अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान से हुई। कार्यक्रम में अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री व सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि सहकारिता मेलों का आयोजन प्रदेश के सभी 13 जिलों में किया जा रहा है और इसका समापन दिसम्बर में देहरादून में होगा। उन्होंने कहा कि इन मेलों के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें किसानों को बाजार उपलब्ध कराना, 3 लाख लखपति दीदियों तैयार करना और मंडुआ, झिंगोरा, धान, बाजरा जैसे अनाजों को वैश्विक पहचान दिलाना शामिल है। डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता से महिला समूहों को 10 लाख रुपए तक और एकल महिलाओं को 21,000 से 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठेले वालों, फल लगाने वालों और छोटे काश्तकारों को भी प्रतिदिन 5,000 रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम 2018 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टैग के बगैर शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नगद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान यूपीआई द्वारा किया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। यह नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान लावारिस जमा राशियों को उनकी वैध दावेदारों की उचित वापसी सुनिश्चित करेगा।
लोग उस रास्ते से नहीं जाना चाहते जिस रास्ते से उन्हें जाना पड़ता है। बैंक आज उनके दरवाजे पर आता है। हमारे पास 3 साल हैं। आप जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ आए, आप हम तक पहुँच सकते हैं और आपके अघोषित धन जो बैंक या LIC या SEBI के पास देखभाल योग्य स्थिति में पड़ा है, उसको वापस दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
चमोली जिले के स्वाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाड़ गांव में लंबे समय से क्षेत्रीय जनता की मांग पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के प्रयास किए जा रहे थे। विद्यालय की स्थापना से अब सीमांत क्षेत्र के छात्रों को बेहतर और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध होगी तथा क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और शिक्षकों को प्रशिक्षण व नवाचार से जोड़कर छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने नियुक्तियों और स्थानांतरण को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के तहत राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों में से 50% पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित विभागीय परीक्षा से भरे जाने हैं। आयोग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और परीक्षा की तिथि भी निर्धारित है, लेकिन अभी परीक्षा संपन्न नहीं हुई है। ऐसे में नियुक्ति में पैसे के लेन देन की बातें पूरी तरह निराधार हैं। स्थानांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि विद्यालयों के कोटीकरण का मामला उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है, इसलिए शैक्षिक सत्र 2025-26 में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। डॉक्टर सती ने कहा कि नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़ी झूठी अफवाहें विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास है और इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू की गई है और 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बरसात के बाद अब देहरादून में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के कार्य में तेजी आएगी। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ADB परियोजना के तहत शहर के मुख्य मार्गों की उपरिगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया। प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया और चमोली जिले के स्वाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।